संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में आज हम वैष्णव दर्शन की बात करते हैं। हरि सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पन, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री भक्तमाल की जय। भक्तमाल के सभी भक्तों की जय, संतों की जय। श्री राधे श्याम सीताराम। वैष्णव दर्शन क्या है? वैष्णव फिलोसॉफी। तो वैष्णवों में मुख्यतः चार संप्रदाय हैं। तो यही चार संप्रदाय कलयुग में चले, और इसके बाद इन्हीं में से आगे जितने भी संप्रदाय, जो भी लोग, मतलब इन्हीं के अलग अलग डिवाइडेशन हुए, बहुत सारे लोगों अलग अलग मतलब मान्यता हुई, लेकिन फिर भी वो चार ही हैं। मेन जो संप्रदाय हैं वो चार ही हैं। चार कौन कौन से हैं? भगवान के आदिकाल से, जब भगवान नारायण से लक्ष्मी जी को उपदेश किया, तो लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय की आचार्य हुई। तो पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय हुआ। दूसरा रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव को उपदेश हुआ, तो भगवान शिव का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तीसरा ब्रह्मा जी को उपदेश हुआ, तो ब्रह्म संप्रदाय। चौथा सनकादिक संप्रदाय, ये सनकादिक संप्रदाय सनत कुमार जी को, चारों जो सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार जी हैं, तो चारों को, उनको ये भगवान के जो 20वें अवतार हुए थे हंस जी, ये उन्होंने उपदेश दिया था। तो चौथा संप्रदाय, मतलब चार ही संप्रदाय हैं, इन्हीं में से ही अलग अलग इन्हीं के पार्ट हुए। जैसे माधव संप्रदाय के जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, उसे माधव संप्रदाय भी बोलते हैं, उसी को गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी उसी में, तो गौड़ीय, गौड़ीय वंश हो गया, गौड़ीय संप्रदाय हो गया। माधवाचार्य जी ने, उनके जो कलयुग में प्रवर्तक आचार्य हैं वो माधवाचार्य जी, तो माधव संप्रदाय भी बोलते हैं। इसी तरह रुद्र संप्रदाय को, इसमें रुद्र संप्रदाय ये विष्णु स्वामी जी ने शुरू किया, मतलब उसके प्रवर्तक हुए यहाँ पे विष्णु जी। विष्णु जी से रुद्र संप्रदाय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मतलब प्रचार किया, तो उसके प्रचारकर्ता सबसे ज़्यादा जो उन्होंने रुद्र संप्रदाय को फैला, वो वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो ये अलग अलग हो गया है, जैसे रुद्र संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय को गौड़ीय मार्ग हो गया, उसी में से निकला हुआ गौड़ीय संप्रदाय हो गया, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। इसी प्रकार श्री संप्रदाय हैं, इसे रामानंदा संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य जी हुए, तो रामानंदा जी, तो रामानंद संप्रदाय हो गया है। इसी तरह से अलग अलग इन्हीं के पार्ट हुए, लेकिन मुख्यतः चार ही संप्रदाय हैं। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनके सिद्धांत क्या हैं चारों संप्रदाय के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वेद में तीन मार्ग बताए गए, वेदों में कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के अधिकारी वो होते हैं जिनका, जो कर्मों से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिनके लिए, जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं होती है, कर्म फल के, फल में भी उनकी आसक्ति नहीं होती। तो जो कर्म और कर्म फल में आसक्त नहीं है, कर्तापन के अभिमान से मुक्त हैं, वो होते हैं ज्ञान मार्ग के अधिकारी। इसी तरह जो कर्म में आसक्त हैं, कर्मों के फल में भी जिनकी आसक्ति है, वो कर्म मार्ग के अधिकारी हुए। जिनकी कर्मफल और कर्मफल के मार्ग में आ सकती है नहीं भी है, वो छोड़ देते हैं अपने भगवान में, और जो भगवान के चरणों से ही जो मिलता है उसको लेने के अधिकारी होते हैं, वो होते हैं भक्ति मार्ग के अधिकारी। तो ये तीन वेद में बताए गए हैं। इन्हीं से ही जितने भी प्रथाएं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म, जितना भी कुछ निकला है, वो तीन के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये तीन ही है मुख्यतः। कलयुग के शुरुआत में जब भगवान बुद्ध जी आए थे, भगवान बुद्ध जी का जब अवतार हुआ, तो भगवान बुद्ध जी के अवतार के बाद उन्होंने वाद दिया शून्यवाद, वहाँ से शून्यवाद की शुरुआत हुई। हम थोड़ा द्वापर के बाद आ जाते हैं, द्वापर के बाद हम कलयुग में आए, तो भगवान का अवतार बुद्ध जी का, तो बुद्ध से शून्यवाद चला। क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता था कि ब्रह्म है, भगवान है, उसके बारे में क्या मान्यता है, तो वो शांत हो जाते थे। क्योंकि वेदों में तीन चीज़ बताई गई है, जहाँ पर तीन मार्ग हैं, वहीं पर तीन तत्व भी बताए हैं। वो तीन तत्व हैं ब्रह्म, जीव और माया। माया को जगत भी कहा है। तो तीन ही तत्व हैं। इन तीनों तत्वों को जब यहाँ पे महात्मा बुद्ध से पूछा गया तो वो शांत हो जाते थे यहाँ पे, शांत। तो वहाँ से जो उनके जो अनुयायी थे, और वो इतना प्रचलन हुआ महात्मा बुद्ध का, जब उन्हें बोध हुआ, ज्ञान हुआ, उन बहुत सारे अनुयायी बनना शुरू हुए। लेकिन जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, वो उनकी बातों को हृदयंगम नहीं कर पाए। जो वो कह रहे थे उनको हूबहू वैसा वो अपने अंदर धारण नहीं कर पाए, और उसी से क्या हो गया, फिर उनके शिष्यों के शिष्य बनना शुरू हुए, और बौद्ध धर्म जो फैला तो पाखंड, पूरी तरह वो एक पाखंड फैल गया, पाखंड धर्म हुआ। उसी पाखंड को नष्ट करने के लिए उससे सनातन धर्म को बहुत हानि हुई। तो भगवान शिव के अवतार हुए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी। तो 8वीं शताब्दी में इन्होंने अवतार लिया, शंकराचार्य जी आए। तो इन्होंने पूरी तरह खंडन किया, और इन्होंने जहाँ पे तीन तत्व बताए वेदों में, इन्होंने वैदिक मार्ग से ही पूरी तरह खंडन किया। जितने लोग बने हुए थे उनको वापस लाए, बहुत सारे सनातनियों को इन्होंने वापसी कराई, और बौद्ध धर्म का खंडन किया। उनमें से इनका जो सिद्धांत था अद्वैत सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। अद्वैत वो कैसे, जो वेद में तीन बताए गए हैं, ब्रह्म, जीव और माया यानी जगत। इन्होंने कहा कि जगत तो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है कि जैसा वो प्रतीत होता है वैसा है नहीं, और जैसा वो है ऐसा वो प्रतीत नहीं होता है, तो जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्म है, जीव स्वयं ही ब्रह्म है, जीव कोई अलग नहीं है, आत्मा भगवान से, परमात्मा से अलग नहीं है, तो वो एक ही है, उसी का अंश है। बस आत्मा के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा हटते ही जीव ब्रह्म हो जाता है। तो उन्होंने तीनों को एक ही तत्व कर दिया कि वो ब्रह्म ही, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, ना जगत है ब्रह्म से अलग, ना जीव है तो, और वो एक एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, जीव भी अलग अलग नहीं है। इसका प्रतिपादन, ये अद्वैत सिद्धांत था, प्रतिपादन हुआ इसका। इसके बाद 11वीं शताब्दी में अद्वैत सिद्धांत का थोड़ा खंडन किया, और इसमें से निकला विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत के का जो सिद्धांत दिया वो रामानुजाचार्य जी ने दिया, जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, श्री संप्रदाय के आचार्य हुए। ये भगवान शेष के अवतार थे, लक्ष्मण जी के अवतार थे रामानुजाचार्य जी। इन्होंने क्या कहा, इनका सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैत क्या है कि ब्रह्म, जीव और माया, जहां उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, वो निराकार, उसका कोई स्वरूप नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप भी है, और वो सिर्फ निर्गुण नहीं है, उसके गुण भी है, वो कृपा का सागर है, दयालु है, हम जो कहते हैं, जो सुनते हैं उसको अनुभव कर सकते हैं, हमारे सामने वो प्रकट होकर स्वरूप भी दिखा सकता है। इन्होंने यहाँ पे इनके अद्वैत में ये अंतर रहा, ये विशिष्ट अद्वैत हुआ। इन्होंने कहा भगवान सगुण है, ब्रह्म सगुण है, और इन्होंने उपासना लक्ष्मी नारायण की बताई, तो लक्ष्मी नारायण की ये उपासना करते थे, और लक्ष्मी नारायण की उपासना का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इनका कहना था जीव के बारे में कि जीव और ब्रह्म में और जगत में भी अंतर इतना है कि जब ये सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, मतलब सृष्टि होने से पहले, जीव और परमात्मा और जगत यानी माया, माया की इन्होंने बताई है, माया तीन प्रकार की है, जैसे रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी माया है, वही जब इस सृष्टि से पहले तीनों ब्रह्म में ही अवस्थित होते हैं तो वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इन्होंने कहा। लेकिन जब सृष्टि काल में आते हैं, जब पैदा होते हैं, तो यहाँ पे वो अलग अलग होते हैं, जीव अलग होता है, ब्रह्म परमात्मा है ही, और माया ये उसको पकड़ लेती है, पकड़ के रखती है माया, माया में ही ये संसार, जगत में ये संसार है। तो तीनों को उन्होंने भिन्न भिन्न भी बताया, और तीनों को एक ही कहा है, तीनों उसी ब्रह्म के स्वरूप। तो इसी तरीके से इन्होंने पूर्ण द्वैत का समर्थन नहीं किया, इन्होंने दो तत्व नहीं कहे, इन्होंने एक ही तत्व कहा कि वही है, सृष्टि से पहले वही था, एक ही, उसी में ही मिल जाते हैं, उसी में ही रहते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत इसे कहते हैं। इसके बाद आया द्वैत। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी आए। माधवाचार्य जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, ये ठीक है कि वो सगुण है, साकार है, लेकिन वो स्वतंत्र है। जो जीव है और जगत है वो परतंत्र है, वो परमात्मा के अंडर में है, परतंत्र है वो, और जीव है स्वतंत्र। इसलिए इनमें भेद है, ये एक नहीं है। यहां द्वैत का प्रतिपादन हुआ, ये दो तत्व उन्होंने बताए कि जीव और जगत ये परतंत्र हैं और परमात्मा स्वतंत्र है। इसलिए फिर उन्होंने इनमें भी आपस में भेद बताया कि जीव और परमात्मा में भेद है, जीव और जगत में भेद है, जीव जीव में भेद है, जगत जगत में भेद है, जीव और जगत में भेद है। तो इन्होंने पांच इनके भेद बताए कि आपस में इनमें देखो भेद भी हैं, भेद करके दिखा दिए। तो पूरी तरह इन्होंने द्वैत को साबित कर दिया माधवाचार्य जी ने। तो हमने जाना अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत के बारे में। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद पे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।